سرخیوں میں ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए ऑपरेशन सिंदूर, आतंकवाद पर भारत के प्रचंड प्रहार पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक एमपी नथानियल, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार।
नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में सुर्खियों में। आज हमारे साथ हैं एमपी नथानियल जो हैं आईजीपी रिटायर्ड सीआरपीएफ, उनसे हम चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका।
थैंक यू
नथानियल जी। पहलगाम में जब 22 अप्रैल 2025 को आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद लगातार ये बातें उठ रही थी कि भारत कार्रवाई कैसे करेगा, और जब भारत ने कार्रवाई की, एक सुनियोजित तरीके से स्पष्ट रूप से अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया और रणनीतिक स्पष्टता उसमें साफ तरीके से नजर आई। भारत ने लगातार ये दिखाया कि हमारी लड़ाई आतंकवाद से है, आतंकवाद के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, और आतंकवाद जो बढ़ावा मिल रहा है कहीं से भी हो, चाहे वो सीमा के इस तरफ से हो, सीमा के उस पार हो, तो उसमें लगातार कार्रवाई कर रहे थे, और इस बार जो कार्रवाई की बड़े पैमाने पर की गई।
ये आपके सब श्रोताओं को मेरा नमस्कार। ये जो कार्रवाई की गई आप सिंदूर, इससे सबसे बड़ा ये था कि बहुत प्लानिंग करके और अचानक किया गया। इसमें जब भी कोई वॉर होता है या कोई ऑपरेशन होता है, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है सरप्राइज एलिमेंट। वो जो सरप्राइज एलिमेंट था, क्योंकि ये वारदात जो हुई जिसमें हमारे 26 नागरिक मारे गए, उसके बाद 8-10 दिन तक तो सोचते रहे अभी आगे क्या होगा, और पाकिस्तान में बॉर्डर के उस तरफ भी वो भी सोच रहे होंगे अब क्या होगा। और अचानक जब हमारे यहाँ से कार्रवाई की गई, इतने बढ़िया तरीके से की गई कि एक्शन केवल टेररिज्म के खिलाफ था, ना कि उनके पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ, ना ही उनके नागरिकों के खिलाफ, लेकिन केवल जो टेररिस्ट के अड्डे थे उन पर निशाना बनाया गया। और उसके वजह से ये हुआ कि उन 9 ठिकानों पे हमला किया गया और नुकसान काफी पहुंचाया गया, और कहा जाता है कि तकरीबन 100 लोग मारे गए उसमें। और इससे जाहिर भी होता है कि जो मारे गए थे उनमें काफी बड़े नेता थे, ये हिजबुल मुजाहिदीन के और एलईटी वगैरह के
जी,
क्योंकि वो इससे साबित होता है, क्योंकि उनके जो आर्मी के जनरल थे उन्होंने जाके वहां पर उनको अपनी श्रद्धांजलि दी, नहीं तो उनका वहां होने का कोई मकसद नहीं था
जी।
साफ जाहिर है कि टेररिज्म को पाकिस्तान जो है वहां पर सपोर्ट कर रही है, और उसके वजह से ये स्तरीय कार्रवाई जो टेररिस्ट है हमारे देश में आके करने की जरूरत करते हैं।
आज जो रक्षा प्रेस वार्ता हुई है उसमें एयर ऑपरेशन महानिदेशक एयर मार्शल ए के भारती ने कहा कि भारत की लड़ाई आतंकवादियों से है और उनके सहयोगी ढांचे से, ना कि पाकिस्तानी सेना से। बार बार ये चीज हम कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई सिर्फ आतंकवाद से है, और उन्होंने इस बात पर शायद दुख भी प्रकट किया कि पाकिस्तानी सेना ने हस्तक्षेप करके आतंकवादियों का पक्ष लिया है, जिसके कारण भारतीय सशस्त्र बलों को और तेज कार्रवाई करनी पड़ी।
बिल्कुल सही है। जो हमारा जब इरादा था, जो ऑब्जेक्टिव था, वो ये था कि केवल उनके टेररिस्ट के जो अड्डे हैं उन पे निशाना बनाने का, और उसी तरीके से कार्रवाई भी की गई। ऑब्जेक्टिव हमारा जो मकसद था वो हमें मिल गया, लेकिन उसके बाद जो कार्रवाई हुई वो पाकिस्तान ने ये समझकर कि हमने वहां पे अटैक किया, उन्होंने फिर हमारे यहां पे कोशिश की कि नुकसान पहुंचाएं, लेकिन हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है इतना रोबस्ट है, इतना बढ़िया है, वो S-400 जो रशियन एयर डिफेंस सिस्टम है वो हमारे पास है, जिसके वजह से उनके जो हवाई जहाज थे या उनके जो ड्रोन थे वो हमारे इलाकों में आके कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सके, और इस वजह से हमारे सारे नागरिक सुरक्षित भी थे। तो ये जो प्रॉब्लम था ये पाकिस्तान ने अपनी तरफ से क्रिएट किया गया, और अगर वो इस तरीके की कार्रवाई ना करते मेरे ख्याल से ऑपरेशन सिंदूर पहले ही खत्म हो चुका होता
जी। और आइए अब सुनते हैं कि डीजी एआईआर ऑपरेशन एयर मार्शल ए के भारती ने क्या कहा।
I would like to place on record the performance and efficacy demonstrated by even the older battle-proven AD systems like the Pechora, the Osa AK and the LLAD guns in countering the Pakistani threat vectors in the current operations. They were all modern generations, but these battle-proven systems stood the test of time and took them on head-on. Another highlight has been the stellar performance of the indigenous air defense weapon system like the Akash system. Here, ladies and gentlemen, I would like to mention that putting together an operationalization of this potent AD environment has been possible over the last decade due to unwavering budgetary and policy support provided by the Government of India in acquiring state-of-the-art equipment and weapon systems.
नथेनियल जी, जिस तरह से उन्होंने कहा, सारी बातें बताई हैं भारतीय चीन ने, तो उसमें ये निकल करके बातें मुख्य रूप से सामने आई कि आत्मनिर्भर भारत, खासतौर पे रक्षा क्षेत्र में जो हमने अपनी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया है, भारतीय चीजों को इस्तेमाल किया गया, युद्धक प्रणाली की बात करते हैं, हवाई प्रणाली की बात करते हैं, तमाम ऐसी चीजें जो इस बार हमें देखने को मिली, जो ये दर्शाती है कि भारत काफी इस क्षेत्र में मजबूत हो चुका है और जो पहले विदेशों पर निर्भरता हमारी रहती तो काफी हद तक कम हो चुकी है।
बिल्कुल, अभी तो जो वर्तमान हमारा सरकार है उनका जो ध्यान है इसके ऊपर ज्यादा है कि हम ज्यादा से ज्यादा इक्विपमेंट, आर्म एम्यूनिशन वगैरह यहीं पे हम बनाएं और ना केवल हमारे इस्तेमाल के लिए लेकिन इवन एक्सपोर्ट करने का भी यहाँ पर अभी प्रावधान है और आने वाले सालों में हो सकता है हमारे यहाँ से काफी तादाद में आर्म एम्यूनिशन और बाकी इक्विपमेंट वेपन वगैरह एक्सपोर्ट भी किए जा सकते हैं।
जी, ऑपरेशन सिंदूर का जब हम जिक्र करते हैं तो कई ऐसे सिस्टम हमें इस बार देखने को मिले जिन्होंने पूरी तरह से पाकिस्तानी वायुसेना की तरफ से जो भी हमले किए जा रहे थे उनको नाकाम कर दिया था और कम से कम नुकसान पहुंचे भारतीय क्षेत्र में, इसके लिए पूरी उन्होंने कोशिश की जिसमें सफलता भी मिली थी। और जहां तक भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम या भारतीय वायुसेना की हम बात करते हैं तो काफी अंदर तक जाकर के टारगेट किया उन चीजों पर, खासतौर पर आतंकवादियों के ठिकानों को नुकसान पहुंचाया, ये किस तरह की क्षमताओं को दर्शाता है।
इससे जाहिर है कि जो हमारे जो जवान हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं डिफेंस सर्विसेज के, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एक काफी वेल ट्रेन्ड हैं और इन्होंने बिल्कुल एक्यूरेटली जाके वहीं पे निशाना बनाया जहां पर उनको दिया गया था टारगेट और उसके वजह से जो उनके 9 ठिकाने थे वहां पर काफी नुकसान पहुंचाया और पाकिस्तान को एक सबक मिल गया है कि अगर वो इस तरीके की जरूरत करेंगे आइंदा भी तो उन लोगों के लिए ये मुश्किल पड़ जाएगा कि वो अपने आप को सुरक्षित रख पाए उसके बाद।
जी, अभी श्रोताओं को बता दें कि पाकिस्तान द्वारा जो भी ड्रोन इस्तेमाल किए जा रहे थे या फिर जो मानव रहित लड़ाकू विमान उन्होंने इस्तेमाल किए उनको काउंटर करने के लिए भारत से विकसित सॉफ्ट और हार्ड किल काउंटर यूएएस सिस्टम को इस्तेमाल किया गया और भारतीय वायु रक्षा कर्मियों ने बड़ी ही चतुराई के साथ में ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया जिससे बहुत ही कम समय में ये सारी की जा सके। और खासतौर पर जब हम अगर उस स्ट्राइक की बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर के तहत तो बहुत ही कम समय, 25 मिनट में सब कुछ कर दिया।
बिल्कुल, यह तो इसके ऊपर निर्भर करता है कि ये बड़े अच्छे वेल ट्रेन थे हमारे जो पायलट थे और एयर डिफेंस जो मैनेज करते हैं उन लोगों का जो बिल्कुल एक्यूरेट ठिकाने पे निशाना लगाना। इससे यह फायदा हुआ कि हमारे जो डिफेंस सर्विसेज के ऑफिसर्स और जवान हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेंड हैं और जब तक कि कोई वेल ट्रेन ना हो वो बिल्कुल निशाने पर नहीं मार सकता। कहा जाता है अंग्रेजी में, व्हेन यू स्वेट इन पीस देन यू एमर्ज विक्टर इन वॉर, तो उसी तरीके से क्योंकि इन्होंने पीस टाइम में काफी मेहनत किया है उसके वजह से एक्यूरेसी जो है वो हमें मिला और बिल्कुल टारगेट पे हमने जाके वहां पे नुकसान पहुंचाया है।
और अब हम DGAIR ऑपरेशन एयर मार्शल को भी एक बार फिर सुन लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं।
How have Indian forces managed to minimize the damage to both civilian and military infra in the country in spite of the unrelenting efforts by the Pakistani forces? Most of you and the majority populace within the country have had a lot to say about the layered and integrated air defense systems put in place by the Indian Armed Forces, which includes the assets of the Indian Army, the Indian Navy, in addition to the primary air defense assets of the Indian Air Force. As you all are well aware, this robust AD system comprises comprises of a large variety of multi-layered AD sensors and weapon systems. From point defense weapons like the low-level air defense guns, shoulder-fired man pads and short-range surface-to-air missiles or SAMs, to area defense weapons like the air defense fighters and longer range surface to air missiles within our inventory. Additionally, the numerous waves of drones and unmanned combat aerial vehicles employed by Pakistan were also thwarted by the indigenously developed soft and hard kill counter US systems and the well trained Indian air defense personnel.
नथेनियल जी, अभी जिन सिस्टम्स की बात की जा रही है, खासतौर पे एडी प्रणाली की बात हुई, एडी सेंसर्स की बात हुई, एडी हथियार प्रणाली की बात हुई, नई तकनीक के सहारे ये हथियार काम करते हैं और सटीकता के मामले में काफी अचूक भी माने जाते हैं, ऐसे में भारतीय वायुसेना द्वारा इन सारी चीजों का इस्तेमाल करना यह जरूर दर्शाता है कि भारत सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण स्थितियों में अपने आप को उस लेवल तक पहुंचा चुका है जहां पर बहुत सारे देश अभी तक नहीं पहुंचे हैं।
ये जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, ये इंडिया में जो आकाश बनाए उन्होंने,
आकाश तीर,
हाँ, तो वो काफी इफेक्टिव है और इसका एफिकेसी प्रूव हो गया अभी कि हम लोग आकाश के ऊपर निर्भर कर सकते हैं और दुश्मन अगर कुछ इस तरीके ड्रोन वगैरह भेजता है तो उसको हम हवा में ही खत्म कर सकते हैं इससे पहले कि वो किसी ठिकाने में पहुंचे। तो इसके अलावा हमारे पास रशियन S-400 भी है जिसका जो डिस्टेंस है अप टू 400 किलोमीटर तक है, लेकिन वो जो है पहले दो आ चुके हैं, अभी और तीन आने थे, लेकिन क्योंकि वहां पे रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है इस वजह से वो डिले हुआ है, लेकिन ये जो S-400 है ये भी बहुत कामयाब है और इसके रहने से हमारा जो एयर डिफेंस अम्ब्रेला जो बनता है वो बड़ा रोबस्ट बन जाता है जिसको पेनिट्रेट करना बिल्कुल असंभव ही हो जाता है।
नथेनियल जी, अभी हम जो बात कर रहे हैं इसमें एक बड़ी चीज हमारे साथ में ये भी हम जानते हैं कि जिस तरह से भारतीय वायुसेना ने अपनी कार्रवाई की और पाकिस्तान में जो आतंकवादियों के ठिकाने थे, चाहे वो पाक के अवैध कब्जे वाले कश्मीर की बात हो या फिर जो पाकिस्तान की सीमा के अंदर जाकर जहां से ये ठिकाने बने थे, जहां से आतंकवादी गतिविधियों को संचालित किया था, वहां पर लगातार अटैक किया गया, तो इसके बारे में भी आइए हम सुनते हैं।
I had already shared some details about the targets engaged by the Indian Air Force. As you can see, we have targeted the length and breadth of the adversary. I'm sure most of you would have already seen the effect of these strikes on ground. A few representative examples from the open source are now being shown to you on the screen. In fact, two of them. This is a strike on the Nur Khan Air Base. And you can see the effect. And this is the aftermath of our strike at Raymiar Khan Air Base. You can see the massive crater that it has left on its runway.
नथेनियल जी, ये जो सफलता हमें प्राप्त हुई कि दुश्मन के एक क्षेत्र में अंदर तक जाकर के हमला करना और सटीकता के साथ निशाना लगाना और पूरी सफलता के साथ वहां से वापस लौटना, कई चीजें इसके पीछे हुए, समन्वित कार्रवाई की हम बात करते हैं, इंटेलिजेंस की भी इसमें बात होती है और एक्यूरेसी होना, खासतौर पर जब शुरू से लेकर लास्ट तक एक्यूरेसी अगर ना हो तो इतनी बड़ी सफलता मिलना शायद मुश्किल होती।
बिल्कुल सही है, इसमें जो ठिकाने थे इनके बारे में इंटेलिजेंस सोर्सेस से बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दिया गया एयरफोर्स को और आर्मी को, जिसके वजह से उनके ठिकानों पे निशाना लेकर मार पाए। अगर वो इंटेलिजेंस एक्यूरेट नहीं होता तो हो सकता था कि कुछ सिविलियंस को भी नुकसान पहुंच सकता था, लेकिन इसमें जो है इतना बढ़िया निशाना उन्होंने लिया है कि मौलाना मसूद अजहर, जो कि बड़ा लीडर है HUM का और काफी ये वांटेड टेररिस्ट है, अभी तो जेल में है, लेकिन इसके जो रिश्तेदार हैं वो काफी मारे गए इस टारगेटेड हमले में। तो ये है कि अगर इन्फॉर्मेशन नहीं होता तो ये टारगेट्स में नहीं निशाना लगता और हो सकता था कि वो वहां से बच भी निकलते।
अगर हम लड़ाकू विमानों की बात करें तो MiG-29 लड़ाकू विमान ने काफी अच्छी अपनी कोशिशें हमें दिखाई और एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर भी इस नौसेना के साथ विमानों की मौजूदगी में शत्रु के किसी भी विमान को पास में नहीं आने दिया। ये सारी चीजें इस तरह से हुई कि एक भारतीय कंबाइंड सेना की जब हम बात करते हैं, तीनों सेनाओं को मिलाकर के कोई भी कार्रवाई करने की बात होती है तो वहां पर बहुत ही अच्छी क्षमताओं का प्रदर्शन किया वहां पर।
बिल्कुल, इसमें एक तो सबसे बढ़िया ये है कि प्रशिक्षण के ऊपर निर्भर करता है, जितना प्रशिक्षण दिया जाएगा उतना ही एक्यूरेट होगा। और दूसरा जो है वेल कोऑर्डिनेटेड। तभी अपने प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार इन लोगों के मीटिंग्स लिए, कभी आर्मी चीफ और नेवल चीफ और एयरफोर्स चीफ, और इनके साथ बात करके बड़ा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से निशाना लगाया टारगेट पे और नुकसान पहुंचाया गया। अगर यह कोऑर्डिनेशन नहीं होता तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता था, लेकिन ये कोऑर्डिनेशन की वजह से बहुत बढ़िया निशाने पे इन्होंने मारा और नुकसान पहुंचाया वहां पे। और सबसे बढ़िया तो ये है कि रावलपिंडी में उनके बिल्कुल एयर बेस पे वहां पे नुकसान पहुंचाया है, जिसके वजह से वो एयरपोर्ट जो है, एयरबेस जो है, वो तकरीबन अनफंक्शनल हो गया, डिसफंक्शनल हो गया। वहां से अब एयरक्राफ्ट वगैरह टेक ऑफ करने में मुश्किल हो सकता है, इनको वहां से टेक ऑफ नहीं कर पाएंगे और उन लोगों के लिए वॉर में भी प्रॉब्लम हो सकता है।
नथानियल जी, जिन 11 सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाया गया 3 घंटे के अंदर, अफ्रीकी हो, मुरीद हो, सुक्कुर, सियालकोट, पसरूर है, चुनियन है, सरगोधा, असकरदो, भोलारी और जैकोबाबाद को निशाना बनाया गया, ये ऐसे स्थान थे जो पाकिस्तान में शायद ये समझे जाते थे कि यहां तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, भारत की कोई भी कार्रवाई यहां पर नहीं हो पाएगी और ना ही कुछ ऐसा होगा कि यहां तक अटैक कर सके। शायद वो उसको सेफ हेवन की तरह मानते थे, उसे यूज करते थे, लेकिन भारत ने वहां पहुंच करके भी ये दर्शाया है कि हम आपको कहीं भी घुस के मार सकते हैं यदि आप हम पर अटैक करते हैं।
बिल्कुल, इसमें जैसे कि मैंने पहले बताया, सरप्राइज एलिमेंट बहुत जरूरत था और उस सरप्राइज एलिमेंट को इस्तेमाल करते हुए हमारे जो पायलट थे वहां तक पहुंच पाए और निशाना लेके वहां पे मार के वापस लौट भी सके। तो इसमें कोई शक नहीं है कि एक तो ट्रेनिंग और दूसरा सरप्राइज एलिमेंट, तीसरा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जो था, इन तीनों की वजह से हम अपना जो लक्ष्य था वो प्राप्त कर सके, ऑब्जेक्टिव पे जा सके।
और अब सुनते हैं डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को।
मैंने आपको कल बताया था कि पिछले कुछ सालों में आतंक की गतिविधियों का कैरेक्टर जो है उसमें कुछ बदलाव आ रहा था। अब हमारी मिलिट्री के साथ साथ मासूम सिविलियंस जो कि अपना बचाव करने में विफल थे उन पर भी हमले हो रहे थे। 2024 में जम्मू सेक्टर में शिवखोरी मंदिर को जाते हुए यात्री और इस साल अप्रैल में पहलगाम में मासूम पर्यटक इस खतरनाक ट्रेंड के विशेष उदाहरण हैं। पहलगाम तक पाप का ये घड़ा भर चुका था, उसके बाद जो हुआ उसके बारे में हम कल विस्तार में बातचीत कर चुके हैं।
तो जैसा भी घई साहब ने बताया, इन बातों को एक आत्मविश्वास दर्शाता है कि हाँ, हमारे अंदर वो आत्मविश्वास है कि हम इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं और अपने लोगों को अगर नुकसान पहुंचने की घड़ी को हम देखते हैं तो दूसरों पर कार्रवाई करने में बिल्कुल चूकेंगे नहीं, पीछे नहीं हटने वाले।
ये बिल्कुल सही समय पे ये प्लानिंग करके वहां पर अटैक किया गया, क्योंकि एक तो सरप्राइज एलिमेंट था और दूसरा ये था कि हमें ग्लोबल सपोर्ट भी मिल रहा था। साफ जाहिर हो रहा था कि पाकिस्तान ने टेररिस्ट भेज के हमारे 26 लोगों को मारा है यहाँ पे, तो इसके वजह से जब हमारा ग्लोबल इमेज भी बढ़िया हो गया, हमें सपोर्ट मिलने लग गया बाकी देशों से भी, तो हमारा जो प्लानिंग था और अटैक था बिल्कुल जायज था और सही निशाने पे मारा। आगे ये भी है कि FATF एक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स,
जी जी,
उसमें भी कार्रवाई करने की जरूरत है और हमारी सरकार ऑलरेडी इस पे जोर दे रही है कि इसको, जो कि पहले 2022 में ग्रे लिस्ट से हटाया गया, उसको वापस ग्रे लिस्ट में डाला जाए। एक्चुअली FATF में 3 लिस्ट होते हैं, एक ब्लैक लिस्ट, एक ग्रे लिस्ट और एक व्हाइट लिस्ट। व्हाइट लिस्ट में तो वो सारे कंट्रीज होते हैं जिसमें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे कोई क्रिमिनल्स को वो सपोर्ट नहीं करते। लेकिन जो ग्रे लिस्ट में आते हैं ये वे देश होते हैं जो कि बढ़ावा देते हैं टेररिज्म को, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी बोलते हैं कि ठीक है हम इसको बंद करेंगे, हम कंट्रोल करेंगे। और जो ब्लैक लिस्ट है वो तो इस वक्त 3 कंट्रीज हैं, म्यांमार, साउथ कोरिया और एक और कंट्री, 3 कंट्रीज जो कि ब्लैक लिस्टेड हैं
जी।
और वो बाज नहीं आते, वो ये भी नहीं कहते कि हम इसको कंट्रोल करेंगे।
नथानिल, जब अपने एफएटीएफ की बात की तो थोड़ा सा अगर हमें थोड़ा सा पीछे जाकर देखते हैं तो भारत ने कई ऐसे कार्य किए हैं जिनसे पाकिस्तान को आर्थिक रूप से चोट पहुंचेगी, चाहे वो सिंध जल समझौते को स्थगित करना हो या फिर अटारी वाघा सीमा बंद करना हो या फिर कई प्रमुख वस्तुओं के निर्यात को रोकना हो और आयात को रोकना हो। ये ऐसे उपाय थे जो भारत, मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान की जो जीडीपी है उसको नुकसान पहुंचाने के प्रयास थे कि कहीं ना कहीं आगे चल करके इसके बुरे असर उसे जरूर देखने पड़ेंगे।
बिल्कुल, ये बढ़िया एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अटैक बोलेंगे हम इसको। मिलिट्री तो एक पार्ट था इसका, लेकिन इकोनॉमिकली भी इनको कमजोर करना जरूरी था। और जहां तक पानी का था, वाटर ट्रीटी, वो भी कैंसिल किया गया, सस्पेंड किया गया, तो उसमें जो है उनको काफी नुकसान पहुंच सकता है। और इससे उनको सबक मिलेगा कि केवल मिलिट्री एक्शन ही काफी नहीं है, उसके अलावा हम और भी कई कार्रवाई कर सकते हैं, जैसे कि वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना, इकोनॉमिकली ऑल्सो एफएटीएफ को लागू करवाना कि इनको ग्रे लिस्ट में डाला जाए। अभी आईएमएफ ने उनको कुछ देने का प्रावधान रखा है, उसको भी अपोज किया जा रहा है, ताकि ये जो उनको फाइनेंशियल एड मिल रहा है वो टेररिज्म में ना लगाकर अपने देश के डेवलपमेंट में लगाएं।
अभी के हालात ये हैं कि भारत ने वैश्विक मंच पर पाकिस्तान के आतंकवादी ढांचे को बुरी तरह से उजागर कर दिया है और कूटनीतिक रूप से भी अलग थलग कर दिया गया है। अगर ओवरऑल सिनेरियो में हम देखते हैं तो बहुत ही कम देश मुखर होकर के पाकिस्तान के साथ में आए थे, जबकि भारत के पक्ष में बहुत सारे देश खड़े हुए, जिनमें बड़े बड़े देश जो है उनका नाम सबसे पहले आता है।
बिल्कुल, ये जो पाकिस्तान में जो विद्रोही हैं, इन लोगों को क्योंकि वहां का सपोर्ट मिल रहा है इसलिए ये इस तरीके से हरकतें कर पा रहे हैं। अगर इनका सपोर्ट हट जाए गवर्नमेंट का, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि टेररिज्म खत्म हो जाए इस इलाके में। लेकिन इनका कुछ और मकसद है और उस मकसद की वजह से ये इनको सपोर्ट करते रहते हैं टेररिज्म को, ताकि जो पब्लिक का, जो वहां का पब्लिक है, उनका ध्यान लोकल जो प्रॉब्लम्स है उसके तरफ से हटा के इन और ले जाया जाए कि पाकिस्तान, इंडिया हमारी दुश्मन है, और इस तरीके का वो प्रोपेगेंडा करके लोगों का जो ध्यान है वो दूसरे तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं।
इन सारी बातों के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से उल्लेखनीय नेतृत्व किया, राष्ट्रीय संकट के समय वो विदेश में थे लेकिन दौरा जिस तरह भी कंप्लीट करके वो आ सकते थे तुरंत आए, और आनंद फानंद में मीटिंग्स करने के बाद ये फैसला किया कि कुछ ना कुछ तो हमें करना ही है।
इसमें तो कोई शक नहीं है कि लीडरशिप बहुत ही मायने रखता है इन चीजों में। अगर उनकी लीडरशिप नहीं होती तो इस तरीके का बिल्कुल नीट एंड स्मूथ ऑपरेशन नहीं हो पाता। ये नीट एंड स्मूथ मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारे तरफ एक कैजुअल्टी नहीं हो पाया जब हमारे आदमी बॉर्डर क्रॉस करके गए।
और अब आइए सुनते हैं डीजी एयर ऑपरेशन एके भारती को एक बार फिर।
And emphatically state that all our military bases, all our systems continue to remain fully operational and ready to undertake any future missions should the need so arise.
यानी इन बातों से हम ये कह सकते हैं कि अभी भी हम पूरी तरह से तैयार हैं।
बिल्कुल, तैयारी तो हमारी हमेशा रहती है, और ये है कि इस तैयारी से पाकिस्तान में भी वहां के जनरल्स को ये मैसेज पहुंच जाता है कि वो इस तरीके की हरकत करने की दोबारा जरूरत ना करें, और करने पर उनको ये बहुत महंगा पड़ेगा।
नथानिल जी, अब फिलहाल चर्चा का समय यहीं पर संपन्न हो रहा है, आप यहां पर आए हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बड़ी मेहरबानी, थैंक यू।
अभी आप सुन रहे थे ऑपरेशन सिंदूर, आतंकवाद पर भारत के प्रचंड प्रहार पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक एमपी नथानिएल, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।